नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा ओवलिन सबका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है कानून बदलने से क्या न्याय मिलेगा। सरकार कानून की किताब बदलाव कर रही है, इसके लिए देश की संसद में बिल पेश कर दिया गया है। इसके बदलाव का कारण अंग्रेजों द्वारा बनाया जाना है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी हमारे आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हुए हैं। गायकवाड़ सर, मोबाइल होने पे स्वागत सर आपका।
हाँ गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ऐसा ज्वलंत विषय लेने जा रहे हो जो हमारे देश को गुलाम मानसिकता से मुक्त करने की ओर एक अग्रसर कदम है ये। तो मैं आपकी इस विषय का स्वागत भी करता हूँ और इस जनमानस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहे। जी सर।
जी सर। सर क्या कानून बदलने से क्या न्याय मिलेगा सर?
देखिए, न्याय का संबंध जो है वो प्रोसेसिंग से, प्रक्रिया से है।
जी
क्योंकि आपने देखा होगा, एक सनी देओल साहब की एक पिक्चर आई थी, उसमें वो कहता तारीख पे तारीख।
जी
ये जो डायलॉग है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में कहा भी है कि जब जज और वकील मिल जाते हैं तो न्याय नहीं, मतलब न्याय पाने की उम्मीद नहीं रहती। कानून कोई भी हो, लेकिन उसका सही रूप से उस पर काम हो तो न्यायप्रिय होता है, न्याय देता है, और समय पे मिलने वाला न्याय न्याय कहलाता है। नहीं तो 10-10 साल, अभी कलाम साहब के समय की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाई थी कि भाई यदि फांसी की सजा का प्रावधान राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में है, और यदि कि इस तरह के मामलों में यदि 10-10 साल न्याय देने के लिए लगते, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं, वो अधिकार राष्ट्रपति से छीन लेने चाहिए। तो ये वाली बात है कि यदि कानून है और उसका क्रियान्वयन सही हो रहा है और समय पे न्याय मिल रहा है, तो मैं इस विचार से, इस बात से सहमत हूँ कि बहुत अच्छा है, वो होना चाहिए सर।
जी सर, क्या कानून की धारा 313 बदलाव है, इसके लिए न्याय प्रक्रिया में 3 वर्ष के अंतराल में न्याय मिलेगा। सर इसको किस तरीके से देख रहे सर, 3 वर्ष के अंतराल में या 3 वर्ष के अंदर इसमें न्याय मिलने की प्रक्रिया रखी गई है?
नहीं, ये जो बातें हो रही है, मैं बोला ना, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अब देखिए, हमारे यहाँ पे 10 लाख पे एक न्यायाधीश होता है,
जी
3 से 4 करोड़ मामले पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अमेरिका की व्यवस्था को देखिए तो वहां 1 लाख पे कुछ लोग रहते, यहाँ पे 10 लाख पे एक न्यायाधीश है। तो आप बताइए फिर न्याय की प्रक्रिया। जहां तक बात है 313 की, आईपीसी की धारा 313, उसमें जो उसका मूल विषय है, उसका मूल विषय क्या है कि महिला के सहमति के बिना गर्भपात नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ एक प्रकार से महिलाओं को सुरक्षित करने का प्रयास हो रहा है, उनके अधिकारों की रक्षा की बात हो रही, और भारत सरकार का सदैव ये प्रयास रहा कि नारी उत्थान, नारी सशक्तिकरण हो। अभी देखिए, 3 तलाक का जो मसला आया था, वहां पे भी वही बात हुई। अभी पिछले बार एक घटना हुई थी, एक लड़की का कोई मसला था, वो हाईकोर्ट गया था, तो उसने कहा था कि जो गर्भ है, उनके साथ मैंने जिससे रिलेशन किए थे, उसका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, तो मैं उस गर्भ को गिराना चाहती हूँ। हाईकोर्ट ने मना कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पे उसको मना नहीं किया जा सकता कि भाई एक शादीशुदा गर्भधारण कर सकती है, गर्भपात करा सकती है, सिर्फ इसलिए कि वो शादीशुदा है, तो फिर एक अविवाहित लड़की ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो ये जो मसला है, यदि वो सहमति है, सहमति देना चाहती है और तो कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। तो इससे ये जो प्रोसेस है, इसमें महिला के सशक्तिकरण का एक भाग जुड़ा हुआ है। और जैसे आप कह रहे कि 3 वर्ष के अंदर न्याय,
जी
मैं तो कहता हूं कि अभी जिस हिसाब से निर्भया के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बर्मा कमेटी ने जो सुझाव दिए थे कि 2.5-3 माह में सब हो जाना चाहिए, महिला की जांच महिला जज ही करेगा, ये सब, तो ये क्या है, कानून को एक व्यवस्थित स्वरूप, न्यायप्रिय और न्यायोचित बनाने का एक बहुत भरसक प्रयास है, और मैं ये बिल्कुल उसके पक्ष में हूं। जी
इसका जी सर। सर हालिया के सत्र में सर धारा 124 की धारा को समाप्त किया गया है, और यह कितना बेहतर देखते हैं सर, कितना इसका प्रभाव देखते हैं कि 124 की धारा को समाप्त कर दिया गया है सर?
देखिए, संविधान में हमारी जो व्यवस्था है, उसमें कहा गया कि हम संविधान की व्यवस्था के विश्वास नहीं करते हैं तो ये एक प्रकार से देश के विरुद्ध का कार्रवाई कहलाती है।
जी
और ये जो 124 है, वो मतलब ये उस आईपीसी, क्योंकि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, हमारी जो आईपीसी वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था अंग है, और वहां पे जो भी प्रोटेक्शन मिला किया गया था, जो भी कानून लाए गए थे वो हमेशा अंग्रेजों को कहीं ना कहीं सुरक्षित कर देते। तो इतने 1886 के बाद की प्रोसेस को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा भी था कि समय के साथ कानून बदलना चाहिए तो उसकी प्रासंगिकता रहती, क्योंकि उन्होंने संविधान के संदर्भ में ये बात कही थी कि संविधान जो है समय के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि संविधान जो है हमारी भौगोलिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक परिचायक होता है और समय के साथ उसमें बदलाव होता है, तो कानून में भी बदलाव होना चाहिए। और रही बात देशद्रोही की कि भाई यदि अभी जिस तरह से व्यवस्थाएं चेंज हो रही है, अभी देखिए टाडा जो बना था या आतंकवाद विरोधी कानून, तो उस समय और आज में बहुत अंतर है, तो हमको तत्काल परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता है, तब तो हम कानून व्यवस्था के द्वारा अपराध को नियंत्रित कर पाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है 124 वाली, ये बिल्कुल उचित है, ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था का प्रतीकात्मक स्वरूप है, इसको बदल देना चाहिए। जी
जी सर। सर धारा 150 की, धारा 150 जो है उसको बदलाव करने का प्रयास कर रही है सर, इसको किस तरीके से देख रहे सर?
नहीं, ये तो बिल्कुल न्याय, मुझे याद है एक व्यक्ति, मैं नगर पिपला पंचायत नारायणवार का हूँ, तो वहां पे एक व्यक्ति मेरे से मिले, बोले साहब वो पुलिस ने तो बोले ये धारा लगा दी, तो बोले क्या होता है, तो मतलब पुलिस जो है किसी को प्रेशर में लाने के लिए, दबाव लाने के लिए, डर दिखाने के लिए इस तरह की धारा का इस्तेमाल करती है, और खास करके जो चौकी प्रभारी होते हैं, थाना प्रभारी होते हैं, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डर दिखा के, नहीं मैं ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा। क्यों लगा दोगे भाई? आप केवल एक जांच एजेंसी हो, प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर आपको धारा लगानी चाहिए, आप उसको डर दिखा रहे हो, और डर उस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है जो बेचारा कानून के ABCD नहीं जानता, तो ये बिल्कुल गलत होता है। और कई बार पुलिस अधिकारी को देखा है कि अपने प्रभाव, अपने दबाव को बनाने के लिए कई बार गलत धाराएं लगाते हैं, मतलब वो उनके मस्तिष्क के अनुरूप धाराएं लगती है, उनके विचारों के अनुरूप धारा लगती है, किसको घेरना है, किससे क्या करना है, किससे वसूलना है, तो ये इस पे नियंत्रण लगेगा और लोग इससे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस केवल एक जांच एजेंसी है, साक्ष्यों के आधार पर जो धाराएं लग सकती है उचित धाराएं लगाना चाहिए, अन्यथा फिर वकील के माध्यम से, वो तो पता है क्या हाल होता है उनका वो कोर्ट में, तो ये सही है, इससे जनता की सुरक्षा का भाव बढ़ेगा। क्योंकि मुझे पता है एक कानून आया था, मतलब गांधी जी के समर ओलेक्ट एक्ट 1919 में, जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा था, तो वो कहते थे कि उस कानून का फाउंडा था कि बिना कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार करना, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है कि पुलिस जो है अपने हिसाब से कानून का इस्तेमाल करती। भाई वो कानून के रखवाले है, कानून लोगों को न्याय देने के लिए किया गया, अपराधी को दंडित करने के लिए, और अपराधी होते कितने, 5% लोग, 45% लोग तो शुद्ध है ना, वो सिर्फ 5% लोगों को कंट्रोल करने के लिए कानून बना है, बाकी तो सारी व्यवस्था समाज के कानून के हिसाब से चलती है, जिसका कोई कानून, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, लेकिन आज भी देखिए सारी व्यवस्था बहुत सारी समाज के अनुरूप होती है। कानून केवल एक डर पैदा करने के लिए होता है और डर के माध्यम से लोग नियंत्रित होते, लेकिन आपने देखा होगा जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो समाज के कानून को ही मानकर अपनी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का संचालन करते, और इसी से हमारी समाज व्यवस्था चलती है। तो कानून तो एक अंग है बस। जी
सर, अपराधों के नियंत्रण हेतु ये जो धाराओं में परिवर्तन देखा जा रहा है, कितना आवश्यक लग रहा है सर?
नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, क्योंकि कानून का एक मूल उद्देश्य है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए, और ये हमारा जो सिस्टम है, कुछ ऐसे अपराध, कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो केवल अपने व्यक्तिगत हितों को लेकर भी कई बार मतलब दुर्भावना से काम करते हैं, तो ये दुर्भावना की भावना पे नियंत्रण लगेगा ना साहब इसमें। हमेशा धमकी, पुलिस वाला एक साधारण व्यक्ति को धमकी देता है, तो ये वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, वर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब ये भी होना चाहिए कि यदि पुलिस वाला गलत काम करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, इस पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार ने। क्योंकि अब मैंने देखा कई ड्राइवर बेचारे बहुत अच्छे लोग होते हैं, सज्जनता से अपना व्यापार करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, मैंने एक बार रेमंड पे देखा भी था कि पुलिस जो छोटा अधिकारी होता है गाली देता है उसको, तो बताइए कौन सी धारा के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत गाली देने का अधिकार है उसको? भाई वो तो आप हाथ दिखाइए, वो साइड में गाड़ी तो खड़ी करता है, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था। तो ये जो चीज होती है, ये लोगों के मन में अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। चंदन तस्कर वीरप्पन खुद नहीं पैदा हुआ, ये हमारे सिस्टम ने पैदा किया, उसमें पुलिस की बहुत बड़ी भागीदारी है। यदि पुलिस अच्छा काम करे, उनका वाक्य है देशभक्ति जनसेवा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करते, तो ऐसे लोगों पे नियंत्रण की बहुत जरूरी। अभी देखिए टी पॉइंट को लेकर एक विवाद उठा था, एक्सीडेंट हुआ था, तो वहां पे ये जो खड़े होके जो अवैध वसूली का काम करते पुलिस वाले, उसमें जैसे यूपी बिहार के जो आरक्षक लोग है, इनकी भूमिका तो बड़ी संदिग्ध है, इनके ऊपर तो अलग से कानून बना के इनको ठोक देना चाहिए, क्योंकि ये लोग वसूली के लिए खड़े रहते साहब, इनको पुलिस की सुरक्षा और पुलिस का जो सेवा भाव है उसको लेकर कोई नहीं। यूपी बिहार के, मध्य प्रदेश का बंदा है तो ठीक है, लेकिन ये लोग मुझे ऐसा लगता है यूपी बिहार के हमारे सौंसर थाना में है कुछ लोग, ये केवल अतिक्रमणकारी बात करते हैं, लोगों को डराते हैं केवल अपने वर्दी के कारण, तो ऐसे लोगों की वर्दी भी तो उतरना चाहिए ना। तो ऐसे कानून में परिवर्तन होता है, तो ये जो यूपी बिहार के कई लड़के, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इन लोग को ये समझ जाना चाहिए कि पुलिस जो है वो सेवा से जुड़ी हुई रहती है, डर दिखाने के लिए लोग, क्योंकि गौरव तिवारी साहब एसपी थे, उन्होंने कहा था कि पुलिस चौकी से डरिए मत, ये न्याय मंदिर है, लेकिन ये यूपी बिहार के जो आरक्षक लोग है सौंसर के थाने में, ये केवल अवैध वसूली का काम करते, और ये पूरा जनमानस को पता है, लेकिन जनमानस के पास सत्ता नहीं है, और जिनके पास सत्ता है वो संरक्षण देते, इसलिए अपराध बढ़ता है साहब, अपराध बढ़ाने के पीछे ये बहुत बड़ी भूमिका है। तो यदि इस तरह के कानून निर्मित होते हैं तो निश्चित रूप से ये जो भ्रष्टाचारी आरक्षक होते हैं, बड़े अधिकारी कुछ जो होते हैं, हफ्ता वसूली करते सड़क पे खड़े हो जाते, ये सब क्या जनता को परेशान करने का काम है? हम लोकतंत्र में रह रहे, स्वतंत्र देश में रहे कि क्या रहे? ऐसा लगता कभी कभी तो कि अंग्रेज शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी कि कम से कम एक बार में शूट कर देते थे गोली मार के, पर यहां तो हमेशा गोलियां चलती है। हमारे अपने पुलिस अधिकारी जिनको हमारी सुरक्षा के लिए रखा गया, सज्जन लोगों को धमकियां देते, वो लोग हेलमेट के नाम पे लोगों के साथ बदतमीजी करते, तो ऐसे ऊपर भी तो कानून बनना चाहिए ना, ये भी बहुत जरूरी है, और ये मुद्दा उठाएंगे सर अब।
जी, तो ये थे एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर कानून बदलने से क्या न्याय बदलेगा, न्याय मिलेगा, इस विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं मोबाइल वाणी के साथ साझा की। मधुकर सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका। जी,
छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।